as Srila Prabhupada came, sannyas grahan ke divas hai, to aaj ke din Srila Prabhupada mein sannyas karne ke the, Kesar Gauriya Mat Mathura mein, to aaj hum thode se unke sannyas lila ke upar charcha karenge, uske baad फिर हरि नाम के विषय में चर्चा करेंगे। ये घटना 1968 सितंबर 17 तारीख, आज कितना तारीख है, 9 तारीख सितंबर, तो 1968 सितंबर 17 को श्रील प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किए थे केशव गौड़िया मठ के संस्थापक कौन है, केशव महाराज, भक्ति तीर्थ केशव महाराज। तो श्रील प्रभुपाद उससे पहले झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज एक संस्था स्थापन किए थे प्रचार के उद्देश्य पर, परंतु उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो फिर उन्होंने वृंदावन आ गए, कब, 1951। उसके बाद श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे और उन्होंने भगवत दर्शन पत्रिका को स्वयं लिखते थे और उस पत्रिका को बेचने के लिए यहाँ दिल्ली आते थे। और श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने के लिए जो उनके गुरु महाराज का आदेश था उसको पूरी करने के लिए वो प्रयत्नशील थे और सोचते थे कैसे है और मैं कब मेरे गुरु महाराज की आज्ञा में पूरी तरह से सफल कर सकता हूं। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, उनकी गुरु महाराज उनको साक्षात स्वप्न में आदेश दे रहे हैं कि तुम संन्यास ग्रहण करो और वास्तव जगत में जाकर के चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करो, पुनः उनको स्वप्न में आदेश दिए। इस विषय में वो सोच रहे थे तो मुझे अभी समय आ गया है, मुझे तुरंत संन्यास ग्रहण करना है। तो उन्होंने भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज के पास, उनके गुरु भाई थे, उनके पास एक पत्र लिखे और उस मठ में रहते थे चैतन्य सरस्वती गौड़िया मठ। परंतु भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज उनको कहे कि देखो हमारे संस्था के कुछ नियम हैं, तो आप पहले संस्था के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करें तो फिर संस्था निर्णय लेगा कि आप किस प्रकार पाश्चात्य जगत जाओगे और कैसे आप अपने पुस्तक को प्रकाश करोगे, तो ये संस्था डिसाइड करेगा। और अभी तक पुस्तक का इतना कोई गुरुत्व है नहीं, लोग खरीद करना नहीं चाहते हैं, तो अभी आप ऐसा करो तो आप पुस्तक प्रकाशन आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी पत्रिका लिखो और हमारी संस्था का नीति नियम को ठीक से पालन करो और फिर संस्था के द्वारा हम निर्णय लेंगे तब इस प्रकार आप पाश्चात्य जगत में जाकर के चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करो, ये संस्था व्यवस्था करे। तो प्रभुपाद सोचे ये वास्तव में मेरी गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए ये कोई अनुकूल शब्द नहीं था वा इस प्रकार प्रतिकर नहीं था, इसलिए सोचे मैं क्या उपाय करूं, मुझे जल्दी ही संन्यास ग्रहण करना है। तब भक्ति तीर्थ महाराज जी बोले थे कि संन्यास लेने में जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दबाज नहीं करना चाहिए। और अमेरिका जैसे देश वहां जाकर के प्रचार करना अभी बहुत कठिन कार्य है। तो इसी प्रकार वो अपने मठ और संस्था की विचारधारा को लेकर के उन्होंने भक्ति वेदांत सॉरी अभय बाप को परामर्श दिया। तो फिर अभी अभय बाबू मथुरा आ गए और केशव गौड़िया मठ, केशव गौड़िया मठ में श्रील अभय बाबू ने पहले एक विग्रह दिए थे, राधा कृष्ण के विग्रह, जिनका नाम था श्री श्री राधा विनोद बिहारी और चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति, अभी भी वो मूर्ति है विग्रह। तो जब वो केशव महाराज से मिलने के लिए गए तो केशव महाराज तुरंत उनको कहे, अभय तुम संन्यास लिए बिना ये प्रचार कार्य को पूरी नहीं कर सकते हैं, तुम जल्दी ही संन्यास ग्रहण करो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं केशव महाराज ने मुझे जो आदेश दिए ये वास्तव में गुरु महाराज के आदेश थे। और श्रील प्रभुपाद वहां पर एक पत्र लिखे, कुछ लिखता हुआ मैं वृंदावन में अकेला बैठा था, मेरे गुरु भाई ने आग्रह पूर्वक कहा, भक्ति वेदांत प्रभु आपको यह जरूर कर लेना चाहिए, संन्यास लिए बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता। इस तरह वो आग्रह करते रहे, आग्रह वे नहीं कर रहे थे, सचमुच मेरे आध्यात्मिक गुरु आग्रह कर रहे थे, वे चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, इसलिए वे मेरी इस गुरु भाई के माध्यम से आग्रह कर रहे थे कि मैं संन्यास ले लूं। अस्तु अनिच्छा पूर्वक मैंने संन्यास ग्रहण किया। 17 सितंबर 1968 को सदरे एसएफजी गौड़िया मठ की दूसरी मंजिल पर 50 फुट लंबे और 50 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रह के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। सी विग्रह को रंग बिरंगी राजकीय वेशभूषा में और चांदी के मुकुट से सजाया गया था। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधक के लिए वरदान की मुद्रा में आगे की ओर उठी थी, बाएं हाथ में कृष्ण के लिए एक पुष्प लिए थी, कृष्ण एक नर्तक की मुद्रा में खड़े थे, उनका दाहिने पैर बाएं से आगे बढ़ रहा हुआ अंगूठे के बल स्थित था, लंबी रूप वाली बांसुरी रक्तिम अधर पर लावण्यमय ढंग से रखे हुए वादन कर रहे थे, सिर के लंबे काले बाल उनके कंधे के नीचे तक लटक रहे थे और गले में पड़ी गेंदों की फूल की माला उनकी घुटने तक पहुंच रही थी। उनकी दाहिनी ओर श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा थी, उनके दाहिने बाह उठी थी, बाएं बाह बगल में थी, शरीर सीधा तना हुआ था और पैर जुड़े थे, उनका रंग हल्का सुनहरा था, आंखें बड़ी थी, रक्ता मुखाकृति सुंदर थी, सीधे काले बाल कंधे तक लटक रहे थे। शिव विग्रह के कुछ नीचे के आसन पर आध्यात्मिक गुरुओं के चित्र गुरु परंपरा के क्रम से स्थित थे, जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, कुलकेशव दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। इसी प्रकार मंदिर का वातावरण थी और साथ में केशव महाराज के लिए एक अच्छा सुंदर आसन था और इस आसन की दोनों बगल में सनातन जिनकी संन्यास के नाम मुनि महाराज हुआ था और दाहिने तरफ थे अभय बाबू जिनका संन्यास का नाम पड़ा भक्ति वेदांत स्वामी। जब संन्यास ग्रहण किए, मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, तो केशव महाराज भक्तिवेदांत स्वामी से आग्रह किए कि कुछ उन्होंने बोले कि उनके संन्यास लेने का क्या उद्देश्य है। तो श्रील प्रभुपाद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे इस संन्यास समारोह में कुछ बोलना है। तो मंदिर की पूरी वातावरण को श्रील प्रभुपाद ने नजर डाले, वहां देखिए जितने सारे श्रोता बैठे हुए थे अधिकांश हिंदी बोलने वाले थे और केशव महाराज और थोड़े कुछ थे जो अंग्रेजी बोलते थे। परंतु श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने पहला संन्यास में उन्होंने अंग्रेज बोलने के लिए चाह की, क्योंकि उनको अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में प्रचार करना होगा। और प्रभु श्रील प्रभुपाद की इतनी प्रभावशाली और आकर्षक प्रवचन था तो सारे श्रोता एक तक उनकी बातें को सुनते थे। श्रील प्रभुपाद पहला अपने संन्यास समारोह में ये कहा कि मैं संन्यास ग्रहण इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वृंदावन में जैसे संन्यास ग्रहण करके लोग माधुकरी करते हैं, तो माधुकरी के उद्देश्य पर मैं संन्यास ग्रहण नहीं करता और मैं वृंदावन में देखता हूं कि अनेक ऐसा ही सन्यासी हैं जो सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए ऐसे दंड धारण किए और तत्काल परिस्थिति में जो गोस्वामी परिवार थे वृंदावन में तो वो भी मंदिर के संचालन इसलिए करते थे कि उनकी परिवार का निर्वाह हो। परंतु श्रील प्रभुपाद की संन्यास ग्रहण का क्या उद्देश्य था? श्रील प्रभुपाद बोले, श्री मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता के लिए और प्रचार के उद्देश्य पर मैं संन्यास ग्रहण कर रहा हूं। तो संन्यास का यही अर्थ है कि पूरी तरह जीवन की अंतिम अवस्था में हमारे संपूर्ण जीवन को हम कृष्ण की सेवा में निछावर करें। और श्रील प्रभुपाद ने इस उद्देश्य पर संन्यास दंड धारण किए और उन्होंने बहुत सारे उनकी उद्देश्य को वहां पर प्रस्तुत किए कि आज चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कितने आवश्यक है, उस विषय में भी उन्होंने प्रकाश डाले थे। तो उनकी जो प्रवचन था लगभग 25 मिनट तक, तो वो भी गौड़ीय मठ की मासिक पत्रिका में तो छपा गया था, जिसमें श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के जीवन चरित्र और उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश था। विवरण का अंतिम अंश इस प्रकार था, हिंदी अंग्रेजी और बंगाली में लेख लिखने की उनके उत्साह और योग्यता को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे त्रिदंडी संन्यास लेने को कहा। पिछले एक साल से वो संन्यास लेने के लिए तैयार थे। भाद्र मास में जिस दिन विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया उसी दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने श्री केशव गौड़ीय मठ में वेदांत समिति के संस्थापक भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास ग्रहण किया। उनको संन्यास आश्रम स्वीकार करते और विरक्त जीवन की लीला भूमि में प्रवेश करते देखकर उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और उत्साह हुआ। और उस संन्यास यज्ञ के समारोह में भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने मंत्र उच्चारण कर रहे थे और अकिंचन कृष्णदास महाराज वो यज्ञ समारोह में सुंदर संगीत स्वर में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की गान कर रहे थे और स्वयं ही मृदंग बजा रहे थे। इसी प्रकार उनकी संन्यास समारोह संपन्न हुआ। तो आज चैतन्य महाप्रभु की बड़े भाई विश्वरूप जो नित्यानंद प्रभु की अभिन्न अंश था, आज के दिन उन्होंने संन्यास ग्रहण किए थे और जिनका संन्यास का नाम था शंकरारण्य और उन्होंने अपने अंतिम जीवन की यात्रा संपन्न किए थे पंढरपुर महाराष्ट्र में। तो आज आइए हम फिर हरि नाम की जो समारोह चल रहे हैं कितना 11 दिन तक, तो आज हम श्रीमद् भागवतम की छठा स्कंद तीसरा अध्याय 26वां श्लोक पर आज चर्चा करेंगे। एतावतालमघनिर्निर्हणाय पुंसम् संकीर्तनं भगवतो गुणकरमनाम्नम् विक्रस्य पुत्र मघवान् जगत् जगजानलोपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनकी गुण तथा कार्य का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भववर्धन से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु यदि वो अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरण अजामिल अत्यंत पापी था किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तात्पर्य रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता की सभा में हरिदास ठाकुर ने दृष्टि की कि एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, भले ही उसने पूर्णतया निरअपराध भाव से उच्चारण न किया हो। स्मार्त ब्राह्मण तथा मायावती जन विश्वास नहीं करते कि मनुष्य इस तरह मुक्ति पा सकता है, किंतु हरिदास ठाकुर के कथन की सच्चाई का समर्थन श्रीमद् भागवतम की अनेक उदाहरण द्वारा होता है। उदाहरण इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। सायं प्रातः व्रणान्धस्य दुःख ग्रामात् विमुच्यते। यदि कोई अत्यंत भक्तिपूर्वक संध्या तथा प्रातः का भगवान नाम का सदैव उच्चारण करता है तो वह सारे भौतिक कष्ट से मुक्त हो जाता है। अन्य उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है कि यदि कोई प्रतिदिन अतीव आदर पूर्वक भगवान नाम का निरंतर श्रवण करता है तो वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुदिनम इदर इदम आदरेण श्रवण। अन्य उदाहरण कहता है श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गृणानं च तदर्थे अखिल चष्टितं। मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान की असामान्य रूप से अद्भुत कार्य का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करे। वो इन कार्यों का ध्यान करे तथा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे। श्रीधर स्वामी पुराण से भी उदाहरण देते हुए पाप क्षयस्य भवति स्मरतां तम अरहन्निशं। भगवान की चरण कमल का दिन रात स्मरण करके मनुष्य सारे पाप फल से मुक्त हो सकता है। इसके आगे वे भागवतम से उदाहरण देते हैं। तस्मा संकीर्तनं विष्णु जगन मंगल मंगसं महतां अपि कौरव्य विद्धे एकांतिकनिस्कृतिं। ये सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का पवित्र कार्य नाम जस तथा रूप के कीर्तन एवं श्रवण में निरंतर लगा रहता है वो मुक्त है। जैसे कि इस श्लोक में अद्भुत ढंग से कहा गया है, एतावत् अडम् अघनिर्हणाय पुंसाम्। केवल भगवान नाम का उच्चारण करने से मनुष्य सारे पापों भाव से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्ता अडम शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का उच्चारण करना ही पर्याप्त है। संस्कृत भाषा के सबसे प्रामाणिक पुस्तक अमरकोश में ये अडम शब्द का अर्थ बता गया है। अडम भूषण पर जाति शक्ति बारण वाचकम। अडम शब्द का प्रयोग आभूषण पर्याप्त शक्ति तथा संयम में किया जाता है। यहाँ पर अडम शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है। यदि कोई गलत ढंग से भी उच्चारण करता है तो वह उच्चारण करने से सारे पाप और फल से मुक्त हो जाता है। पवित्र नाम की इस उच्चारण शक्ति का प्रमाण है अजामिल की मुक्ति। जब अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया तो उसे परमेश्वर का ठीक से स्मरण नहीं आया, बजाय उसके इसके उसने अपने पुत्र का स्मरण किया। ये नारायण वो भगवान को स्मरण करके नहीं बोला था, बल्कि अपने पुत्र को स्मरण करके पुकारा था। यह तो निश्चित है कि मृत्यु के समय अजामिल अत्यधिक शुद्ध नहीं था, वो तो महान पापी के रूप में विख्यात था। इतना ही नहीं, मृत्यु के समय मनुष्य के शारीर की दशा पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। अतः ऐसे विषम स्थिति में अजामिल के लिए स्पष्ट रूप से उच्चारण कर सकना अत्यंत कठिन होता। तो भी अजामिल ने एकमात्र भगवान नाम का उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त की। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो अजामिल जितने पापी नहीं है। यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को दृढ़ व्रत होने के साथ ही भगवान नाम का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो कृष्ण की कृपा से माया के पास से निश्चित रूप से छूट जाएगा। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन ऐसे पुरुष के लिए भी संस्तुति किया जाता है जो अपराध करते हैं, क्योंकि कीर्तन करते रहने से वो क्रमशः निरपराध भाव से कीर्तन करने लगेगी। निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाता है। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेम कुमार तुम महान। मनुष्य के मुख्य गंतव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपने लगाव तथा उनके प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद भागवतम के निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करते हैं। एवं धर्मे मनुष्याणां उद्धावात्मानि वेदिनं मयि संजायते भक्ति को अन्य अर्थस्य वशिष्यते। हे उद्धव, मानव समाज के लिए परम धार्मिक प्रणाली वो है जिससे मनुष्य मेरे प्रति अपने सत्य प्रेम को जागृत कर सके। इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति शब्द का वर्णन प्रेमोक्त से करते हैं। वो अन्य अर्थ अस्य भक्ति के समक्ष मुक्ति की क्या आवश्यकता है, और चक्रवर्ती पाद पद्म पुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उद्भूत करते हैं। नाम अपराध जुक्तानं नामानेव अरण्यहं अविश्रांति प्रयुक्तानि तन्नेवार्थ कराणि च। जब कोई शुरू शुरू में अपराध पूर्वक भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करता है तो वह बारंबार कीर्तन करने से ऐसे पापों से मुक्त हो जाएगा। पाप क्षयस्य भवति स्मरतां तम अहर्निशम्। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति का पालन करते हुए तीन रात कीर्तन करता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। निम्नलिखित श्लोक को उद्धृत करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कड़ो नास्ते 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 अन्यतम। कहो तथा पाखंड की इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान नाम का कीर्तन है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की इस संस्कृति का दृढ़ता से पालन करे तो उनकी स्थिति सदैव सुरक्षित रहेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो ओं विष्णु पदाय कृष्ण दृष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति विदरंग स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशकाय हरे कृष्ण। क्योंकि सबई के प्रबंध में हम हैं तो ये प्रसंग जो संकीर्तन आंदोलन के सप्ताह चल रहा है हरिदास ठाकुर की तिरुभाव की स्मारक पर, तो वास्तविक चैतन्य महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा अपने जो जुगधर्म हरे कृष्ण आंदोलन को ये विश्व में फैलाए, इसलिए उनको उन्होंने नामाचार्य उपाधि दिए थे। तो ये कैसे है कि हरिदास ठाकुर पाश्चात्य जगत पर नहीं गए और रहे तो कहां, नीलांचलपुरी और बंगाल में, परंतु चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को घोषित किए आप ही जगत की आचार्य है, जगत कर गुरु तुम्हें जगत रे आर्य आचार प्रचार तुम्हें कर कोई कार्य। वास्तविक हरिदास ठाकुर का जो आचरण है वो ही प्रचार था और आचरण के द्वारा उन्होंने जगत को ही सिखा ली। आपने न पहले प्रभु सिखाए न चाहे यही तो सिद्धांत गीता भागवत है। तो अपने आचरण को दृढ़ करने के लिए शास्त्र के सिद्धांत भी आवश्यक है, क्यों हम करना चाहिए, इसलिए अनेक दृष्टांत हैं। ये श्लोक में कद एतेवान अलम कद इतना ही पर्याप्त है, किसलिए पुंसा अगा निर्घणाय, मनुष्य का पापों को हरण करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। कौन सा पद इतना ही आवश्यक है, संकीर्तना भगवतो, भगवान की नाम की संकीर्तन। और किस प्रकार करना चाहिए, गुण कर्म नामना, ये संकीर्तन भगवान की गुण और कर्म के अनुसार, भगवान की कीर्ति उनकी कर्म के अनुसार का गुण के अनुसार ये विश्व में प्रसिद्ध होता है। पर सारे संसार में भगवान को पुकारते हैं उनकी गुण के आधार पर, उनके कर्म के आधार पर। यदि वो चोरी करते हैं उनको माखन चोर करते हैं, यदि वो गोवर्धन धारण कर लेते हैं तो गोवर्धन धारी होते हैं, जब वो रणंगण को छोड़ देते हैं तो रण छोड़ हो जाते हैं। जब भक्तों को आनंद का प्रसन्नता प्रदान करते हैं तो गोविंद कहा जाते हैं। तो इसलिए गुण कर्म नामना, भगवान के नाम को उनकी गुण के आधार पर, उनकी कर्म के आधार पर ही उच्चारण करना चाहिए। और किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, विकृष्य क्रंदन करते हुए हृदय से। तो इसे करने से क्या होगा, कहते याम मुक्ति, ये शब्द में कहते मुक्ति, लेकिन आचार्य लोग कहते मुक्ति नहीं है, वो किस प्रकार को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप अवस्था जो आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, प्रेम कुमार का प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कहते देखिए अजाम्य, इसके दृष्टांत क्या है, ना अजाम्यम अभी, कहते ऐसा कोई दृष्टांत है क्या, किसको श्री भगवान के नाम उच्चारण करके मुक्ति प्राप्त कर लिया, कहते हाँ अजाम्य अभी अभवान अजाम्य जैसे पापी भी, और किस समय उच्चारण किया, म्रियमाण मरते समय उन्होंने नारायण इति सिर्फ चार अक्षर वाला नाम को उच्चारण किया नारायण, और उन्होंने कैसे पुकारा था, पुत्र के नाम लेकर की नारायण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, नारायण से तो एक बार लिया था, लेकिन उनका इतनी मृत्यु के समय इतना उनकी कठिनाई थी, इतनी कष्ट थे क्योंकि उन्होंने जमदूत को देख करके इतनी भयंकर थे तो पूरी तरह से डरते, और ये प्रसंग कौन कर रहे हैं, स्वयं जमराज और सुखदेव गोस्वामी, हाँ वो कह रहे हैं कि यही है, यही मार्ग है जो महाजन लोग स्थापन करते हैं, वो ही एकमात्र मार्ग है, महाजन एन कटस्य पंथा। तो इसके पूर्व प्रसंग आप लोग सब जानते हैं कि अजाम्य एक ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था, परंतु उन्होंने कुछ गलत संग करने के कारण, दृष्टि के संग, गलत दृष्टि के संग, सभी प्रकार की इंद्रियों के संग को किसी प्रकार प्रकृष्ट मार्ग में लगाना चाहिए, ये सीखना चाहिए हर समय, क्योंकि भक्ति का ही उद्देश्य है ऋषि के न ऋषि कैसे सेवना, यदि कोई भी एक इंद्रिय छूट जाता है सेवा से वो हमारे पतन के कारण हो जाता है, और एक इंद्रिय को यदि हम ठीक रूप से सेवा में लगाते हैं तो अन्य इंद्रिया स्वतः अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, और ये कौन सी इंद्रिया है जिसको हम दृढ़ता पूर्वक लगाना चाहिए, वो है श्रवण, बहुत सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। इसलिए भक्ति का पहला अंग क्या है, तो अजाम्य सिर्फ एक बार उन्होंने एक शूद्र और एक शूद्राणी का इस गलत शाम को देखकर कि उनका मन पाप से अछन्न हो गया, और फिर उन्होंने सारी अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को परित्याग कर दिया उस वेश्या के संग में जगह, तो क्रमशः उस पाप कार्य की वजह से उन्होंने अनेक सारे पाप कार्य करने बैठे, जैसे चोरी करना, क्योंकि जब एक बार मन दूषित हो जाता है हम कितने पहले पवित्र हुए होंगे उसका कोई प्रभाव नहीं है, परंतु उस समय जब मन में कर्मशता आ गई और उस कर्मशता की वजह से हम अनेक प्रकार के विकर्म कर बैठे, क्योंकि उस समय हमको कोई सोच नहीं होगा कि हम लोग पाप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो अजाम्य ने इसी प्रकार कितनी पापों कार्यों की चुकंद राशि को इकट्ठा कर लिया, जैसे पहाड़ के समान था उस पाप, और उन्होंने उस दृश्य से कितने संतान उत्पन्न किए, 10 संतान, परंतु इतना है कि भक्ति करने से हमारे एक सुरक्षा कवच, रक्षा कवच मिल जाता है। क्या है? न अभिक्रमा नाश अस्ति। ये भक्ति कभी नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। स्वल्पम सुअल्प थोड़े से भी करने से प्रायते महत्वया, ये पतन की भय से हमको बचा लेता है, अधोगति से हमको बचा लेता है। तो अजामिल की सुकृति था, उन्होंने आखिरी पुत्र का नाम रखा था नारायण। और जब जीवन की 80 साल में पहुंच गया था, तो उस समय उन्होंने परिवार के प्रति इतना आसक्त था, और खास करके अपना छोटे से लाडला लड़का के प्रति उन्होंने बहुत आसक्त था। और उन्होंने उस पुत्र के प्रति आसक्त होने के कारण बार बार खाते समय, खेलते समय, सोते समय, तो हमेशा ही नारायण को पुकारते, नारायण तुम कहाँ हो, इधर आओ मेरे साथ बैठ करके खाओ, नारायण आओ मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। तो अनजान से इस नारायण नाम को उच्चारण करने से उनकी अनेक पाप की राशि नष्ट हो चुका था पहले। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस दूसरा अध्याय की 9 और 10 श्लोक पर टीका करते हुए कहते हैं कि अजामिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखिरी मुहूर्त में नारायण नाम को उच्चारण किया तब फिर भगवान की पार्षद आ गई। कहते नहीं, पहले से उन्होंने कितनी बार अनजान से भगवान के नाम को उच्चारण कर चुका था। परंतु अजामिल ने कोई नाम अपराध नहीं किया था। कोई प्रश्न कर सकता है कि अजामिल यदि नारायण के नाम को उच्चारण करता था फिर उन्होंने वेश्या की संगति कैसे करता था, शराब कैसे पीता था, अन्य सारी पाप कार्य को कैसे करता था? कहते नाम उनके पाप को धीरे धीरे नष्ट करता था। और इस श्रीमद् भागवत में ये तीसरा अध्याय में केचित एक शब्द है, केचित केवल या भक्ति वासुदेव परायण अघम उन्नति क्रास्नेय निहार एव भास्कर। तो केचित और केवल या शब्द से कहते हैं कि केवल भक्ति वही है जो नाम की प्रयुक्त श्री में भगवान के प्रति ही किया जाएगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। यही इंटेंशन रखना चाहिए, ना कि नहीं थोड़ा मेंटल पीस रहेगा, परिवार में सुख रहेगा, हमारे एंजाइटी सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं। सिर्फ नाम नामने के लिए ही लेना चाहिए, इसको कहते शुद्ध नाम। और अपराध का नाम क्या है? हम लोग नाम के आश्रय लेते हैं परंतु नाम का प्रयोग क्या करते हैं, चलो अपराध हो गया हम नाम ले लेंगे फिर ही कट जाएगा, वहा इतना हम पाप कर ले फिर थोड़ा नाम उच्चारण कर लेंगे तो फिर उस नाम उच्चारण से पाप हो जाएगा। कहते ये अपराध होता है। और नामाभास क्या है? नामाभास वो है जिसमें आपको पता नहीं है कि नाम की कितनी शक्ति है, पर नाम उच्चारण करने से क्या फल होगा, पर अपराध का पाप क्या होता है। परंतु आप कुछ अन्य मनस के रूप में जिसको कहते अज्ञान अदर से, अज्ञान संस्कृति जिसको कहते हैं, आप बोल दिया हरे कृष्ण, हालांकि वो पापी हो, बहुत सारे पाप कार्य में लगा हो, परंतु उन्होंने सिर्फ एक नाम उच्चारण किया, उनको मालूम नहीं है कि मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं मेरे पाप धुल जाएगा, परंतु वो नाम के प्रभाव से उनके नामाभास का फल मिलता है। और भगवत गीता में भगवान इसको पुष्टि करते, अपि चेदे भी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतवः सर्व ज्ञान प्रवनीवं वृजिनं संतरिष्यसि। तो पापों के जो फल है, दुख है, उससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगा, जब इस भक्ति को आश्रय करते हैं, वो हम ग्लाना प्लबेना चक्रवर्ती पद करते हैं नहीं, भक्ति आश्रय, भक्ति को आश्रय करते हैं। तो अजामिल उन्हें कई बार पुत्र के नाम उच्चारण कर चुका था, और जब अपने जीवन के अंतिम अवस्था में पहुंचा उस पाप की वजह से जमदूत पहले पहुंच चुके थे। और ये कैसे संभव हुआ, जमराज महाजन होते हुए भी उन्होंने अपने दूतों को कैसे भेज दिए? ये तो नाम की महिमा जानते हैं, महाजन है, और स्वयं जमराज कहते हैं द्वापर स एतरि विजानीयम धर्म भागवत भटा। हम द्वाप 12 लोग इस धर्म के रहस्य को जानते हैं, क्या ये नाम के रहस्य को नहीं जानते हैं? क्योंकि गलित में ही धर्म है। इसमें ये कहा गया है कि धर्म करने के लिए एकमात्र मार्ग क्या है, इस नाम को उच्चारण करना है। तो फिर क्यों ऐसे अपने दूतों को भेज दिए? आचार्य लोग कहते हैं कि इस नाम की महिमा को वास्तविक अपने दूतों को जानकारी देने के लिए, अपने दूतों के माध्यम से, यहां अनेक ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो तो धर्म के कार्य करते हैं परंतु नाम के महत्व को समझने के लिए उन्होंने, जमराज ने स्वयं इस प्रकार कार्य करवाए अपने दूतों के लिए। तो इस अध्याय के पहला श्लोक में ये दिया है, निसम्य स्व भटो को वर्णितम प्रत्याह किं तानपि धर्मराज, ये धर्मराज एवं हताज्ञं विहितं मुरारे निते सके जस्य वसे जनोयम। तो जमराज को धर्मराज कहा जाता है, वो धर्म को रहस्य में जानते हैं, धर्मस्य तत्व निहितं गुहायं महाजन जैन गतस्य प्रमुखा। तो ये गुहा विषय जानते हुए भी उन्होंने इस प्रकार कार्य किए, कहते नहीं वास्तविक धर्मराज दो थे उस समय, द्वापर में एक समय दो धर्मराज थे, कौन कौन? कौन? विदुर और युधिष्ठिर। तो आप सोचिए ये जमराज जो है ये भी धर्मराज है, परंतु धर्म के गुह्य रहस्य को जानने पर भी धर्म की स्वरूप उनके सामने टिकता नहीं है। वास्तविक धर्म के स्वरूप कौन है? भगवान है। इसलिए धर्मराज शब्द से सिद्धल स्वामी कहते हैं ये धर्म को पालन करने वाले हैं, धर्म की आज्ञा को पालन करने वाले हैं, परंतु धर्म स्वरूप है श्री कृष्ण, जिनके सामने कभी अधर्म नहीं टिक सकता है। जैसे सूरज सोचे कि आज मैं अपॉइंटमेंट लेता हूं कि 10 बजे के बाद, प्रसाद के बाद मैं तमोदेव को मिलूंगा, उनको फोन करके बता दे मैं 11:30 बजे आपको मिल सकता हूं अपॉइंटमेंट ले। अगर मुझे सूर्यदेव इस प्रकार अपने रथ पर वेट करिए और उन्होंने को कहा कि चलो मैं आज तमोदेव के साथ मेरा मीटिंग है और जाके पहुंच जाए, क्या वो तमोदेव को मीट कर सकते हैं, अंधकार को मीट कर सकते हैं? क्योंकि सूर्य की स्वरूप में प्रकाशमय है, उनके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही धर्म स्वरूप है। जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुतर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मते। तो धर्म की जो जो नीतियां हैं वो भगवान के पास ही नीति है, परंतु कभी कभी जो धर्म करने वाले उनके सामने अधर्म की परिस्थिति आ जाता है और वो अधर्म की परिस्थिति बहुत समय तक रहता है, उसको प्रतिकार करने के लिए झेलना पड़ता है,
इसलिए भीष्मदेव कहते हैं, हे धर्मराज, आप धर्म के स्वरूप को जानने पर भी इतने कठिन है, आपके समझ पता नहीं। जो धर्म को धारण किए हैं वही तुम्हारा सारथी बने हैं, तुम्हारे कुल की सभाकर बने हैं, दूत भी बने हैं। वो जानते हैं क्यों आप इतने इतने कष्ट को भोग कर रहे हैं। भीष्मदेव भी महाजन है, इसलिए धर्म के तत्व को छोड़ दिए कृष्ण पर। परंतु कृष्ण के सामने कभी अधर्म टिक नहीं सकता है। धर्मराज के ऊपर आक्रमण किया कौन, किसके घर में थे, विराट के घर में, उसको पसा में फेंके विराट। धर्मराज सहन कर ले, अपने खून को हाथ में रखे, विदुर को अपमानित किए दुर्जेता, वो घर छोड़ दिए। परंतु उस अपमान का प्रतिक्रिया ना ही दुर्योधन को तुरंत मिला, ना ही विराट को तुरंत मिला। परंतु धर्म के स्वरूप जो है भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति यदि कोई अपराध करता है तुरंत उसके फल मिलता है। जैसे शिशुपाल गाली देते ही उसका गला कट गया, पौंडर आया उन्होंने कहा, पर भगवान उसे तुरंत प्रतिकार कर दिया। अघासुर जितने बड़े बड़े असुर आए वे धर्म के स्वरूप के ऊपर प्रतिघात करने के, आपके सामने कोई फतंगा जाए वो बच नहीं सकता। इसलिए धर्म के तत्व को कृष्ण ही जानते हैं, और कृष्णा और कृष्ण के नाम अभिन्न है, नामा नामनी अभेद। इसलिए जमदूत ने जब आकर के कहे कि देखो ये कैसी बात है, हम तो कभी पहले ऐसे नहीं सुने हैं कि आपकी आज्ञा को उल्लंघन करने वाले और कोई दूसरे व्यक्ति हैं। आप बताइए ये संसार में कितने ऐसे दंडधारी व्यक्ति हैं जो प्राणियों के पाप कर्मों की फल को दंड देने वाला है। कति संति ही संस्कारम जीव लोकस्य वे प्रभु त्रिविधम कुर्वतः कर्म फलादि व्यक्ति हेतव। आप बतलाइए, चक्रवर्त बात कहते हैं कि ये जन्मदूत इतनी गुस्सा हो गए थे, ये कहना चाह रहे थे कि देखो यदि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना दंड देने वाले, फिर आपकी कंपनी में हम और काम नहीं करेंगे, हम दूसरे किसके पास नौकरी करेंगे। बोलो यदि आप एकमात्र ईश्वर हैं तो फिर आपकी आदमी तो हम काम करेंगे, यदि ऐसे बहुत हैं तो हम फिर आप दूसरे के पास जाएंगे। देखो हम अच्छे काम कर रहे थे, अचानक इतना पापी था और उसको जनपास में बांधना ही एकमात्र उचित मार्ग था, परंतु कैसे है ये चार चार ऐसे बहुत प्रभावशाली शक्तिमान चार ऐसे महान पुरुष प्रकट हो गए और तुरंत उस जनपास को काट दिए। हम इस प्रकार जो व्यवहार है इसको हम सहन नहीं कर सकते, ये अधर्मिक है। तो जमराज इन सब बातें को सुनकर ही हंसने लगे। इसलिए हंसे ना, जब दूतों ने कहे कि देखो ये क्यों बांस को काट दिए, जमराज ने पूछे आप तो कह रहे ऐसा बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ऐसे लग रहे थे लेकिन क्यों काट दिए। उन्होंने कहा नहीं स्वामी, ये सिर्फ ही अचानक मरते समय बोला नारायण नारायण के अभिहितम, और इतना सुनते ही चार लोग गए मान भैया डरो मत डरो मत डरो मत, बस ये नारायण इतना ही बोल दिए। और ये शब्द को सुनकर ये चार लोग ने आगे, तो जमराज इन बातों को सुनकर कहे इति देवं स आकृष्टः प्रजा संजमनः जमा प्रीतः स दूतं प्रत्याह। दूतों के मुख से भगवान के नाम उच्चारण को सुनकर की जमराज को सो गए, कहते बहुत अच्छा कि हमारा यहां नरक में कोई भी पहले से भगवान का नाम नहीं लिया था। लेकिन मेरे बुद्ध ने नाम उच्चारण कर लिया। धन्यवाद। अभी सुनो, बैठ जाओ थोड़े समय। आज ये नारायण सत्र को सुन करके ना मेरे मन में बहुत प्रीति हो रहा है कि आज मैं सत्संग करूं। तुम लोग बैठ जाओ, थोड़े समय हम राधा माधव करके फिर चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार जमराज ने कहा कि देखो, तुम जिसको मानते हो ना ये सर्वोच्च अधिकारी है, ये नहीं मेरे ऊपर और कोई है। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, इस सृष्टि में जितनी बड़े बड़े महेंद्र देवेंद्र और अधीश्वर है, इन सबके अधीश्वर के ऊपर एक परम ईश्वर है, वो है भगवान, जिनके विषय में मैं कभी आपको सुनाया नहीं, क्योंकि आप लोग सत्संग नहीं करते हैं, हमेशा ही पापियों के पास पहुंचते हैं, उनकी संग करते हैं। लेकिन आज विष्णुदूत को देखकर के तुम्हारा आज सौभाग्य मिला है ये सत्संग सुनने के लिए। तो फिर उन्हें ये बताते हैं कि वास्तविक भगवान जो विष्णु है वो साक्षात धर्म है, वो धर्म स्वरूप है, और वो जो भी कुछ कहते हैं वो ही धर्म की वाक्य है, वेद की वाक्य है। उन्होंने कहे थे कि हम भी उत्तर दिए थे कि वो जब वो चार सिद्ध पुरुष ने पूछे, तुम लोग कभी धर्मराज की दूत हो ना तो बताओ धर्म का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि वेद प्रणीतम धर्म। तो जमराज ने तो बहुत उत्तर अच्छे तो उत्तर दिए, लेकिन जानते हो तो कौन वेद को पढ़ेंगे क्या है, वेद को प्रणयन करने वाला कौन है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्या वेदांत कृत कद धर्मान साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरुषयना विदेवा। स्वाभाविक है कि तुम लोग अनजान हो, क्योंकि इस धर्म के विषय में ये धर्म के रहस्य को बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते हैं, और मुनि ऋषि लोग भी नहीं समझ पाते हैं, सिद्ध लोग भी नहीं समझ पाते, और तुम लोग कैसे समझो। तो कहते क्या है धर्म, कहते ये धर्म के रहस्य को हम बारह लोग समझते हैं, क्योंकि गुह्य विशुद्धम दुर्वेद्यम ज ज्ञानतम अमृत अस्मते, क्योंकि बहुत गुह्य विषय है और इसको साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे, परंतु ये धर्म है। भक्ति जोगा भगवती तन्नामा ग्रहण आदि भी, यही धर्म है भक्ति करना। सबे पुंसा परो धर्म जतो भक्ति भगवती। और ये भक्ति जोग को हम कैसे संपन्न करें ना, तन्नामा ग्रहण आदि भी, उनका नाम ग्रहण पहले आदि, जिस भक्ति जो की प्रारंभ उनके नाम ग्रहण से प्रारंभ होता है वही भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहे कि देखो ये नाम का क्या महिमा है जो सभी प्रकार की भक्ति के अंगों को संपन्न करता है। कहते नाम उच्चारण महात्म हरे वश्यत पुत्र का अजाम अभी ये एवं मृत्यु पास अनुच्छेद, उन्होंने मृत्यु की बंधन से मुक्त हो गए। समय हो गया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे विचार है कि नाम कैसे एक नामनी को भगवान को स्वयं आकर्षित कर लेता है। स्मृति क्रमेण रसना मनसो नियोज्य, सिर्फ जीवों से हम नाम उच्चारण करने से क्रम से नाम रूप गुण और लीला ये अपने आप स्वप्न हमारे स्मरण को जागृत कर देता है लीला। इसलिए ये अनावश्यक है अड़ाव कहते इतना पर्याप्त है, ऐसा नहीं कि हम कुछ बाबा जी वेश ले लें, उस स्वरूप को स्मरण करें, हम कृष्ण के धाम में किस रूप में हैं, इसका तो नहीं, एक कुछ भी आवश्यक नहीं है। चक्रवर्ती पाकर यही अड़म है कि अगर नाम में सब कुछ है ये क्रम से आता है और अपने आप प्रकट होता है। इसलिए जो इस भागवतम को रहस्य को समझते हैं कि भागवतम ऐसे है वैदिक शास्त्र के सारे हैं जिसको कहते हैं निगम कल्पतरु। अब ये कैसा है ना ये कल्पतरु वृक्ष में सारे वैदिक साहित्य के वृक्ष में ये श्रीमद् भागवतम एक फल है और कैसे फल ना पका हुआ फल है और फिर व्यासदेव कहते हैं पीबतम। अरे फल को तो खाया जाता है लेकिन उसको पीने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहते ये रहस्य है भागवतम को समझने के लिए भाव चाहिए। निगम कल्पतर गणित कलम सुख मुखामृत द्रव समझुतम। जिसके हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ है तो ये फल रस में परिणत नहीं होगा, तब तक आस्वादन नहीं कर सकता है, उसमें छिलका और गुठली भी रहेगा। अर्थात जिसका अंदर बाहर इस भावना से द्रवीभूत नहीं हुआ है तब तक ये भागवतम रस को आस्वादन नहीं कर सकता है। इसलिए व्यासदेव ने कहा भूति भाव का रसिका विपतम। तो सुखदेव गोस्वामी पहले बहुत ब्रह्मज्ञानी थे परंतु जब उन्होंने कृष्ण लीला को श्रवण किए उनके हृदय द्रवीभूत हो गया। इसलिए द्रव का मतलब क्या है? मेल्ट, जो हो जाए जैसे शक्कर है नमक है पानी में डालते ही मेल्ट हो जाता है। तो भक्त के हृदय जब तक इसी प्रकार द्रवीभूत नहीं होता है भगवत भावना में तब तक ये भागवत रस को आस्वादन नहीं कर सकता है। जैसे बटल के बाहर, जैसे शहद की बटल के बाहर हम जैसे चाटने से क्या मिलेगा, लगता था अच्छा है लेकिन कोई रस नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार यदि हम हृदय को इसी प्रकार सरल नहीं बनाते हैं ये रस को आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए सारी वैदिक शास्त्र का निचोड़ चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिए, कहते विद्या बदून सभी विद्याओं का सृष्ट है जीवन, सारी विद्या बदून का यही एकमात्र जीवन है क्या है। और हरिदास ठाकुर गोपाल चक्रवर्ती जैसे मुढ़ों को समझाए ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं शास्त्रज्ञ हैं परंतु ये चैतन्य महाप्रभु के जो सीक्रेट गिफ्ट है इसको समझ नहीं पाएंगे कि कितने लिमिटेड है और कितने गुणे हैं। तो इसको जो भावुका है और रसिका है ऐसा नहीं है हम बहुत आनंद से छलांग मार दिए वो रासलीला श्रवण कर लिए, नहीं वो भावुकता नहीं है। भावुका भाव से युक्त, जैसे महाराजा लोग कहते हैं कि ड्रामा करते समय देखो जैसे जैसे सीन आता है ना उसी के अनुसार बैकग्राउंड में म्यूजिक दिया जाता है। मान लीजिए युद्ध का भी लीला आ रहा है तो मायापुर में ड्रामा देखते हैं ना, तो उस समय जब युद्ध आ जाता है तो म्यूजिक कैसा लगता है ना 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 ना, तो ऐसे प्रकार होने से तो युद्ध का रस उत्पन्न होता है ना युद्ध करते हैं। लेकिन म्यूजिक बंद हो जाए तो क्या होते हैं एक्टर्स ठंडा पड़ जाते हैं, पीछे देखते हैं आगे पीछे भाव हट गया। तो पैथेटिक सीन जब आता है तो भावली में निकलते हैं तो आंख में आंसू आते हैं भाव उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, और उसी समय उसको हम पेश कर सकते हैं ड्रामा इस प्रकार। तो भावना का मतलब है जो उस राग को लेकर भी मन में रखे हैं और उसी के अनुसार वो कर रहे हैं। कभी कभी मिर्ची भाव है आप जानते हैं कथाकार लोग लोकनाथ महाराज कहते हैं कि कथा करते समय उन्होंने क्या करते हैं मिर्ची का रस को रखते हैं और आंख में डाल करके उन्होंने ऐसे लीला को प्रस्तुत करते हैं। हाँ अक्रूर ने लेके चल गए भगवान को तो गोपियां ऐसे रो रहे हैं तो मिर्ची का रस डाल करके आंख में आंसू बहा देते कहते ये मिर्ची भाव। तो ये भावना नहीं है, जो भावना शब्द कहते हैं वास्तविक कृष्ण के लिए अपने हृदय को मेल्ट कर देना द्रवीभूत करना ये द्रवता ही भावना। और ये भावना को युक्त करके श्रील प्रभुपाद ने गए पाश्चात्य जगत कॉम्प्लेक्स जीवन। हालांकि जो सभी माला से उन्होंने 16 माला कर दी लेकिन हम अंगुली उठा के नहीं कर सकते क्यों ऐसे प्रभुपाद की अपने गुरु को उल्लंघन कर ले इसलिए सावधानी पूर्वक शास्त्र में कहा गया है महाजन को जस्ट फॉलो करो, उनके ऊपर कमेंट मत करो। महाजन उस पद को जस्ट फॉलो करो, व्हाटएवर ही एस्टैब्लिश्ड दैट इज रियल धर्म। प्रभुपाद ने जो कुछ कहे जो कुछ दिए दैट इज परफेक्ट। और आके मत सोचो कुछ, हारा ना करिया मने आशा, यही आशा यदि रखें तो फिर इस धर्म के विशुद्ध जो संकीर्तन आंदोलन के द्वारा आज सारे संसार में फैल रहे हैं इसके सीक्रेट को हम समझ पाएंगे। अजी प्रभुपाद नहीं है, लगभग इतने 40-45 साल हो गया है, लेकिन उनके संकीर्तन आंदोलन आप देखिए कितने फैल रहा है। केवल हीरो को हैप्पी नहीं बनाता है, हीरो को भी हैप्पी बनाता है। आज बड़े बड़े हीरो लोग भी जोड़ रहे हैं दम मर दम उठ जाए दम, हाँ हरे कृष्ण हरे राम देवानंद ने कहा था। आज देखो बड़े बड़े हीरो लोग भी ऐसे कीर्तन करते हुए तो बहुत अच्छे परिश्रम कितने। यही है हरे कृष्ण आंदोलन का सीक्रेट। और प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दी गई इस संदेश को यदि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त दृढ़ता पूर्वक पालन करे तो फिर क्या होगा, हम सभी प्रकार की विपत्तियों से बच सकते हैं और सदैव हमारा स्थिति सुरक्षित रह सकता है। इसलिए ध्यान पूर्वक ये हरे कृष्ण चैंटिंग को नहीं छोड़ना है और हरे कृष्ण कीर्तन संकीर्तन को कभी बंद नहीं करना चाहिए। और देखो इसी प्रकार इस आंदोलन की जो सदस्य है इस आदेश को दृढ़ता पूर्वक पालन करने के कारण आज कितनी विश्व में सब जगह फॉरेस्ट फायर की तरह सब जगह व्याप्त हो रहा है। इसलिए यही निवेदन है जो संकीर्तन आंदोलन अभी चल रहा है हरे कृष्ण संकीर्तन, इसमें सब हम मिल जाए। संकीर्तन मतलब हम सब मिल जाए, नहीं तो नाक कट जाएगा। वो कौन सा था पंडित, वो कहा कि देखो इतने बोल दिए नाम उच्चारण करने से मुक्ति मिल जाएगा। सो कितनी जुगों तक कितने समय तक तपस्या करने के बाद नहीं मिलता है, इसलिए नाम उच्चारण करने से हो जाता है। ये सब भावुकता की बात है, छोड़ो यदि ये इसे नहीं होगा ना तो मेरे नाक काट दूंगा। और पद का नाक कट गया, ऐसे बकवास से कोई लाभ नहीं होता है। सिर्फ अपने जीवन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। तो इसलिए समय बचत करके जो आचार्य लोग नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने जो प्रस्तुत किए प्रमाण को कि नाम उच्चारण करने से केवल मुक्ति नहीं भगवान का प्रीति प्राप्त हो जाता है। एवं व्रतम सो प्रेमा कृत्या जातानुराग धृतचित्त उत्सही हसंती रोदंती अथ रोती इसी प्रकार वो पागल होकर के नृत्य करता है। तो इसलिए ये संकीर्तन आंदोलन केवल मुक्ति प्रदान नहीं करता है, सबको प्रेम प्रदान करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।